सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं हन्ताय मच्छरय्या जाय जरा मरणनन्तपोरढा संसारलयातमहं जीर्णच्छिन्नाजिनं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति वृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार, जिसका नाम है स्थिति विभक्ति, उसमें हम पृष्ठ संख्या 97 पर आ गए। 97 यहाँ स्वामित्व अनुगम चल रहा है, अपना कल से शुरू हो गया है। किसमें स्वामित्व? भुजगार में स्वामित्व, भुजगार अनुयोग द्वार चल रहा है, और उस भुजगार अनुयोग द्वार के अवांतर जो भेद है, अवांतर अधिकार, उसमें अभी हम स्वामित्व देख रहे हैं। कल हमने क्या देखा था? समुत्कीर्तना देखा था। समुत्कीर्तना में ओग की अपेक्षा भुजगार वाले है, अल्पतर वाले है और अवस्थित है, इतनी बात बताई। अब यहाँ स्वामित्व बताने जा रहे। तो स्वामित्व अनुगम की यहाँ से हम फिर पढ़ते हैं 96 पृष्ठ से। भाई दिखाई देता है? नहीं तो लाइट लगाना। लाइट क्या लगाऊं? इससे आपको दिखेगा। यहाँ से पढ़ते हैं हम 96 पृष्ठ से। स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनीय की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति किसके होती है? अब इसमें दो लिए हैं, भुजगार और अवस्थित, दो के कॉम्बिनेशन, जिनमें भुजगार भी है और अवस्थित भी है, इसमें अल्पतर को छोड़ा है। तो कहते किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के होती है, और अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि के होती है। यानी मिथ्या दृष्टि में तो तीनों पाए जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं एक इंद्रियादि में, या जब अनुत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है तब अल्पतर होती चली जाती है स्थिति। पहले जो उत्कृष्ट बांधता है और बाद में अनुत्कृष्ट बांधता है, उसकी तो स्थिति घटती चली जाएगी, उसको अल्पतर कहेंगे। परंतु सम्यक दृष्टियों में तो अल्पतर होती है, उसमें भुजगार और अवस्थित वाले को नहीं लिया है, सम्यक दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि के लिए तीनों ही बताए हैं। अब यही कथन कहां कहां और घटित होता है? तो सातों पृथ्वियों के नारकी, सामान्य तीर्यंच, पंच अल्पतर स्थिति विभक्ति। हाँ, किसकी? भुजगार। हाँ नहीं, सम्यक दृष्टियों में भुजगार नहीं है और अवस्थित भी नहीं है। भुजगार और अवस्थित मिथ्या दृष्टि को कहा, और अल्पतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को लिया। अब यही जो कथन, ऐसा ही कथन सातों पृथ्वियों के नारकी, सामान्य तीर्यंच, पंचेंद्रिय त्रिक तीर्यंच, पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक मनुष्य त्रिक, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, क्या सहस्रार के ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं है? हाँ, वहां मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अल्पतर है, क्योंकि वहां शुक्ल लेशा पाई जाती है, तो उनमें अल्पतर वाला होगा। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैक्रियक का योगी, वैक्रियक मिश्र का योगी, कारमाण का योगी, इनमें ये यही बात घटित होगी कि भुजगार और अवस्थित है वो मिथ्या दृष्टि में और अल्पतर है वो सम्यक दृष्टि में। कारमण का योगी तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, असंयत चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्णादि पांच लेशा वाले, क्योंकि हम शुक्ल लेशा में भुजगार और अवस्थित वाला नहीं होगा। भव्य संगी आहारक और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। दोबारा आपका कहना है कारमण का योग में भुजगार होगा कि नहीं होगा, अभी एकेंद्रियों में से आया है या जघन्य स्थिति से आया, इतना ले लो, एकेंद्रिय से मत ले लो, जघन्य स्थिति के साथ आया है और अधिक बंद करेगा तो भुजगार हो सकता है उसमें। पहले हम क्या कहते थे, जो कम स्थिति में से अधिक स्थिति में आया है, अधिक स्थिति में आया है ऐसा लिया था, उसको जघन्य घटित किया था वहां पर विग्रह गति के पहले या दूसरे समय में। अब ये आएगी बात कैसे कैसे घटित करना। कारमण का युग में ऐसा भी ले सकते हैं हम, एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय में ही उत्पन्न हुआ है, एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय में ही है, हाँ हो सकता है। हमने क्यों लिया था, क्योंकि पहले वाला का बंध चलता है और पहले वाले के बंध यानी वो जघन्य करने वाला चाहिए, प्रोवाइडेड 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 था, यानी पहले वाला बंध करता है। अब हम यहां लेते हैं, बादर में से कोई सूक्ष्म में गया, बादर में अधिक कर रहा था तो वो पहले वाला होगा ना, बादर में सूक्ष्म भी करता है, यानी सूक्ष्म नहीं मुझे कहना कम भी करते, जघन्य भी करता है, तो उस अपेक्षा से लेना वहां एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय, या उसी पर्याय में गया मान लेते हैं और बंद अधिक करने लगा, उस पर्याय के योग्य बंद करना है। नहीं ये ऐसी है, गुजगार अवस्थित और अल्पतर तीनों होते हैं ऐसे लिए हैं। अब यहाँ जो लिए ना कारमण का योगी में, आप देखो आपने कारमण का योग में अल्पतर पूछा कि भुजगार पूछा, अल्पतर सम्यक दृष्टियों में तो अल्पतर होगा ही, कारमण का योगी सम्यक दृष्टि में अल्पतर तो होगा, पर्याप्त होने पर होगा, परंतु जो सम्यक दृष्टि है कारमाण का योग में है उसका क्या होगा, अल्पतर होगा। तो भुजाकार अभी घटित करेंगे वो मिथ्या दृष्टि में, वन सेवेंटी वन की सेकंड है। भुजगार और अवस्थित मिथ्या दृष्टि के और अल्पतर किसके होती है, दोनों लेना उसमें, दोनों ही तो ये ऐसी बातें ऐसी मार्गणाएं ली है जहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों पाए जाते हैं, तीनों की बात होगी, तीनों की बात होनी चाहिए। यहाँ आएगी ना बात में, दोनों ही लेना है, मिथ्या दृष्टियों के तीनों और सम्यक दृष्टियों में अल्पतर। ऐसी मार्गणाओं के नाम मूल में गिना है जहाँ सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि में भी, यानी इन मार्गणाओं में दोनों तीनों ही लेना है। स्वामित्व तो तीनों का लेना है। ओघ में जो कथन होता है भुजगार अल्पतर और अवस्थित के लिए, वही कथन जिन मार्गणाओं में संभव है वे ही मार्गणा यहाँ गिनाए हैं। विशेषार्थ हम पढ़ेंगे ना तो क्लियर होगा। अभी तो हम ये आगे वाले दो पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो हम 172 नंबर का पढ़ेंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में। अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त तो मिथ्या दृष्टि ही है। मोनि की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति किसके होती है? किसी भी जीव के होती है, यानी उनमें तीनों ही पॉसिबल है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस अपर्याप्त, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के जानना चाहिए, ही डालना वहां पर। यानी ये ऐसी मार्गणाएं लिए है सभी मिथ्या दृष्टि की है। हमने देखा था मिथ्या दृष्टि के भुजगार अल्पतर और अवस्थित तीनों ही होते हैं। अब आगे वाला पॉइंट ये तो समझने जाए, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आनत कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में, यानी यही बात होती है, ये सभी मिथ्या दृष्टि की है। ये अभी हमने अपर्याप्त आदि अवस्थाएं देखी थी, मार्गणाएं देखी थी, तो उसमें तो भुजगार अल्पतर और अवस्थित तीनों ही हो गए। और जिन मार्गणाओं में सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, हाँ, तो उनमें तो भुजगार अल्पतर वो तीनों उस अपेक्षा से तीनों हो गए। उसमें वो कथन होगा कि भुजगार और अवस्थित मिथ्या दृष्टि के होते हैं और अल्पतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होते हैं। ऐसा कथन ओग के जैसा कथन ऊपर की जो हमने लिस्ट पढ़ी थी उसमें होता है। अब नीचे का 173 नंबर का बिंदु देखते हैं। आनत कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में, अभी यहां तो मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि दोनों संभव है, तो जहां मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि है वहां तो ओग के समान कथन होना चाहिए था, परंतु ये कैसे शुक्ल लेशा वाले हैं। तो इन देवों में अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है? यहाँ केवल अल्पतर ही पूछा, किसी भी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के होते। यहाँ के मिथ्या दृष्टि जीवों के भी अल्पतर होगा, क्योंकि वो नए नए जो बंध होगा वो अल्प वाला होगा और पहले वाली स्थिति घटती चली जाएगी एक एक निषेक निकलने से। इसी प्रकार शुक्ल, वो शुक्ल करना शुल्क हुआ, शुक्ल पहले को बाद में लो। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वालों के कहना चाहिए, यानी आनंद से लेकर वहां तक तो शुक्ल होती, इसलिए वहां तो देवों के ही नाम गिनाए, और अन्यत्र भी जहां शुक्ल लेशा है वहां ऐसा ही कहेंगे। मनुष्यों में भी हाँ अल्पतर होगा, हाँ शुक्ल लेशा में भुजगार नहीं होगा, अल्पतर होगा, यह बताए ना, ऐसा ही शुक्ल लेशा में जानना चाहिए। यही तो बात अभी बता रहे, आनस से लेकर नवे ग्रेवेक तक समय दृष्टि भी है मिथ्या दृष्टि भी है, कोई भी हो उनमें तो अल्पतर ही होगा। यह तो गति मार्गणा की अपेक्षा देवों में आनस से लेकर ग्रेवेक बताया, ऊपर तो अल्पतर होगा ही होगा, परंतु यहाँ सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, तो उसके होते हुए भी अल्पतर ही है। सम्यक दृष्टियों में तो अल्पतर ही होता है कहीं भी, हाँ मनुष्य मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेशा वाले को भी अल्पतर होगा, यही बात यहाँ बताना चाहते हैं। अब नव अनुदिशी से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है? किसी भी सम्यक दृष्टि जीव के होती है। इसी प्रकार आहार का योगी, आहार मिश्र का योगी, अपगत वेदी, अभी ये कौन से लिए, जहां जहां अल्पतर होते हैं ऐसे सब लिए। अपगत वेदी अकषायी आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी, ये सारे सम्यक के साथ वाले हैं। संयत सामायिक संयत छेबुतोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्रायिक संयत यथाख्यात संयत संयता संयत अवधि दर्शन वाले। अवधि दर्शन जब कहते हैं तो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन सम्यक दृष्टि के कहते हैं। विभंग ज्ञानी के अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। अल्पतर हमने देखा था सम्यक मिथ्यात्व में जो सम्यक्त्व में से गिरकर आया है उसके होगा और मिथ्यात्व में से भी आया वाला उसको उसके पहले जघन्य होती है ना, नहीं उसकी उत्कृष्ट कब होती है, उसके पहले उत्कृष्ट होती है बाद में होती जाती है और इसके भी ऐसा ही होगा। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि को भी लिया उसने। विशेषार्थ इस बात का उल्लेख हम पहले कर आए हैं कि मिथ्या दृष्टि के भुजगार आदि तीनों स्थिति विभक्तियां संभव है। मिथ्या दृष्टि में तो तीनों ही हो सकती है, तीनों में से कोई भी होगी और सम्यक दृष्टि के केवल एक अल्पतर स्थिति विभक्ति ही संभव है। यानी वहां स्थिति कांडक घात हो या न हो फिर भी स्थिति का एक एक निषेक तो गलता जाएगा और नया बंध स्थिति से कम स्थिति वाला होगा। जितनी है स्थिति पड़ी हुई उससे नया बंध कम होगा और एक एक निषेक तो प्रति समय गलेगा ही, क्योंकि हम कहें ना ये शुद्धोपयोग में या करण परिणामों में तो कांडक घात होती है परंतु अन्यथा क्या होगा। तो भले वो चौथा गुणस्थान वाला भी क्यों न हो उसके तो स्थिति का एक एक निषेक तो गलता ही चला जाएगा। और जब जब विशुद्धि बहुत अधिक होती है जैसे अनंतानुबंधी की विषय योजना आदि करता है वहां तीन करण परिणाम होते हैं तो उस काल में और भी स्थिति गल जाएगी, परंतु इसमें तो अल्पतर ही होगा। इस अनियोग द्वार में इसी दृष्टि से विचार किया गया है। पूर्वोक्त सूचना अनुसार सामान्य सिद्धांत यह निष्पन्न हुआ के सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव तीनों स्थिति विभक्तियों के स्वामी हैं। ये तो सामान्य से कथन कर देते हैं और सम्यक दृष्टि जीव केवल एक अल्पतर स्थिति विभक्ति के ही स्वामी हैं। हमने वही देखा था, उसमें पूछा था कि भुजगार और अल्पतर के कौन है तो मिथ्या दृष्टि, सॉरी भुजगार और अवस्थित के कौन है तो मिथ्या दृष्टि और अल्पतर के कौन है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ हुआ मिथ्या दृष्टि के तीनों है और सम्यक दृष्टि के एक अल्पतर ही है। अब विशेष यानी आदेश की अपेक्षा मार्गणाओं में बताएंगे। अभी आदेश की अपेक्षा भी विचार करने का मूल यही है। क्या मूल है कि उसमें सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, उसी अपेक्षा से वहां भंग ये कहेंगे। आनंद से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों को व शुक्ल लेशा वालों को छोड़कर शेष जिन मार्गणाओं में मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन संभव है वहां मिथ्या दृष्टियों को तीनों स्थिति विभक्तियों के स्वामी जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के ऑप्शन किसका है, मिथ्या तो होते हुए भी भुजगार नहीं है ऐसा कहां हो सकता है, तो शुक्ल लेशा जहां पाई जाती है। और आनंद से लेकर नौ ग्रहवेग तक देवों में और शुक्ल लेशा वाले को छोड़कर शेष जिन मार्गणाओं में मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन संभव है वहां की बात है, तीनों स्थिति विभक्तियों के स्वामी जानना चाहिए। और सम्यक दृष्टियों को केवल एक अल्पतर स्थिति विभक्ति का ही स्वामी जानना चाहिए। फिर वो सम्यक दृष्टि कहीं का भी हो, किसी भी नारकी हो या किसी भी गति का हो, तो उसके तो अल्पतर ही होगा। ऐसी मार्गणाओं के नाम मूल में गिनाए ही है, यही बात है ना अभी हमने, कि कौन सी मार्गणाएं गिनाई है कि जहां मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है, और मिथ्या दृष्टियों में वो शुक्ल लेशा वालों को छोड़ दिया है। ऐसी मार्गणा हमने वहां देखी थी, कृष्णादि पांच लेशा देखी थी। इतना विशेष जानना कि यहाँ सम्यक दृष्टि पद से सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके भी एक अल्पतर स्थिति विभक्ति ही होती है। यानी सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि को भी ये अल्पतर वाली होगी। यानी एक मिथ्या तो गुणस्थान के अलावा भुजगार और अवस्थित ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं होगा, और शुक्ल लेशा वालों को भी नहीं होगा, भले वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में हो तो भी। मनुष्य अपर्याप्त आदि कुछ मार्गणा ऐसी है जिनमें एक मिथ्या दर्शन ही संभव है। पहली मार्गणा ऐसी गिनाई थी जिनमें दोनों ही संभव है, इसलिए ओग के समान कहा था। अब इनका कथन क्या होगा, मिथ्या दृष्टि ही है केवल। अतः यहाँ तीनों स्थिति विभक्तियों का स्वामी मिथ्या दृष्टि जीव होता है। यद्यपि इस कषाय पाहुड़ के अनुसार इनमें कुछ मार्गणाएं ऐसी है जिनमें सासाधन सम्यक्त्व भी पाया जाता है। क्या कहते हैं, कषाय पाहुड़ के अनुसार क्यों कहा, क्योंकि सासाधन वाले के ये मरकर सासाधन के साथ अन्य गति में जाने वाले के बारे में भी दो मत है। एक मत ऐसा है कि वो संगी पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न होता है, और दूसरा मत ऐसा है कि एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक, अभी संगी पंचेंद्रिय तो उत्पन्न होगा ही होगा, सभी पर्याप्तों में उत्पन्न होता है। जैसे एकेंद्रिय पर्याप्तों में उत्पन्न होगा, द्विंद्रिय पर्याप्तों में उत्पन्न होगा, परंतु क्या होता है वहां जो उनका निवृत्त पर्याप्त का काल है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले वो सासाधन में से मिथ्यात्व में चले जाते हैं। इसलिए कहीं ऐसा बताया है कि सासाधन गुणस्थान कौन कौन से जीव समासों में पाया जाता है, तो वहां एकेंद्रियों से सब पर्याप्त भी गिने हैं। परंतु अन्य एक मत ऐसा है कि इन जीवों में वो उत्पन्न होते ही नहीं है, वो पंचेंद्रियों में ही उत्पन्न होते हैं, संगी में, क्योंकि सासाधन होता किसको है तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों को होता है, क्योंकि उपशम सम्यक तो में से गिर कर आने वाले हैं, उस अपेक्षा से तो वे है ही संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव। परंतु मरकर जाने की अपेक्षा से अपर्याप्तों में जो घटित होता है कौन सा अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, तो ऐसे दो अपेक्षाएं आती है। इसलिए क्या कहा, कषाय पाहुड़ के अनुसार शब्द डाला उन्होंने, लिखा ना बीच में, इस कषाय पाहुड़ के अनुसार इनमें कुछ मार्गणें ऐसी है जिनमें सासाधन सम्यक्त्व भी पाया जाता है, पर उसकी अपेक्षा से यहाँ पृथक कथन नहीं किया। फिर भी उसकी अपेक्षा विचार करने पर एक अल्पतर स्थिति विभक्ति ही प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे एकेंद्रियादि जीव, एकेंद्रियादि में अभी हमने सबको लिया था, जो सासाधन सम्यक् दृष्टि होंगे ने वो पूर्व भव से जो सासाधन के साथ उनमें उत्पन्न हुआ है, ऐसे जीव होंगे ने वहां प्राप्त नहीं करेंगे, वे सासाधन सम्यक्त्व के काल तक एक अल्पतर स्थिति विभक्ति के ही स्वामी होंगे। दो मत है ना सासाधन में उत्पन्न होने के बारे में, कि कोई एकेंद्रिया में भी उत्पन्न होते हैं तो जब तक उनका सासाधन है तब तक वो अल्पतर होगा, मिथ्या तो गुणस्थान प्रकट होने पर तीनों ही ऑप्शन होते हैं वहां पर। यहां हम 98 पृष्ठ पर विशेषार्थ में नीचे से पांचवी लाइन में आए हैं। देखो हमारे जिसके बारे में बात चल रही थी ना, वो के वहाँ जो लिस्ट दी है मार्गणाओं की, उसमें किसको लेना, तो ये बात यहाँ लिखी है ऊपर से चौथी लाइन में। देखो तीसरी लाइन से वहाँ पढ़ते, सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव तीनों स्थितियों के विभक्ति के स्वामी है, तीनों स्थिति विभक्तियों के स्वामी, और सम्यक दृष्टि जीव केवल एक अल्पतर स्थिति विभक्ति के ही स्वामी है। आदेश की अपेक्षा नहीं, वही तो अभी आगे की लाइन में पढ़ना भी आप, अभी मैं वही पढ़ के सुना रही हूँ आप। वहाँ जो लिस्ट दी है उसमें मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि दोनों हो सकते हैं, ऐसी दी ली। यहाँ क्या लिखा आगे, आदेश की अपेक्षा भी विचार करने का मूल यही है। क्या मूल है? कि जिसमें समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। परंतु इसके लिए एक अपवाद कौन सा है? आनंद से लेकर नव ग्रवेक तक के देवों को और शुक्ल लेशा वालों को छोड़कर शेष जिन मार्गणाओं में मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन संभव है, वहां मिथ्या दृष्टियों को तीनों स्थिति विभक्तियों के स्वामी जानना चाहिए और सम्यक दृष्टियों को केवल एक अल्पतर स्थिति विभक्ति का ही स्वामी जानना चाहिए। ऐसी मार्गणाओं के नाम मूल में गिनाए ही है। स्पष्ट हुआ ना? वहां जो मार्गणाएं है उसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों हो सकते हैं, उसी अपेक्षा से ये सारी लिस्ट यहाँ जो हमने अभी पढ़ी ना, देखो तीनों की है ना। अकेले अल्पतर किसमें होगा? मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि? यहाँ मिथ्या दृष्टि जहाँ होते हैं वहाँ तीनों ही होते हैं, और जहाँ सम्यक दृष्टि होते हैं वहाँ एकमात्र अल्पतर होता है। जहाँ जहाँ मिथ्या दृष्टि है वहाँ तीनों है, और जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि है वहाँ एकमात्र अल्पतर है। तो जहाँ जिस मार्गणा में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गए वहाँ मिथ्या दृष्टि के लिए तीनों और सम्यक दृष्टि के लिए एक अल्पतर, ऐसा है। वो तो अपवाद है मिथ्या दृष्टियों के लिए, वो तो बता दिया, उसकी बात नहीं चल रही थी। देखो विशेषार्थ में नीचे पहला ले, इस बात का उल्लेख हम पहले कर आए कि मिथ्या दृष्टि के भुजगार आदि तीनों स्थिति विभक्तियां हैं और सम्यक दृष्टि के केवल एक अल्पतर स्थिति विभक्ति है। तो जिनमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही है, ऐसी मार्गणाएं वहां गिनाई थी। हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, सासाधन में जाने पर अनंतानुबंधी का बंध होता है, परंतु वो बंध पूर्व स्थिति से कम होगा, ठीक है। फिर भी कांडघात हुआ था तभी हुआ था, परंतु सासाधन में आने पर तो जितनी स्थिति थी उतनी है ना, सासाधन के लिए उसकी उतनी स्थिति थी। तो साधन में प्रवेश करने पर जितनी स्थिति है उससे तो भी कम होगा, इसीलिए तो कहा अल्पतर ही है। उसका अर्थ क्या है? जितनी स्थिति लेकर वो साधन में प्रवेश किया है उस स्थिति से कम का ही बंध वहां होगा। हमने तो यहां तक की देखा था सातवें नरक में, मिथ्या तो गुणस्थान में जाने पर भी नया बंध उसको कुछ काल तक तो कम होता है। तो यहां तो सासाधन की बात है, सम्यक मिथ्यात्व के भी बारे में यही बात बताई, इन दो गुणस्थानों में भी अल्पतर होता है। और बाकी जो ना जिस मार्गणाओं में मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, मनुष्य अपर्याप्त है, पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, त्रस अपर्याप्त है, विकलेंद्रिय आदि है, उनमें भी तीनों ही पॉसिबल है। आनंद से लेकर नवग्रहवेग तक की बात उन्होंने की थी, मिथ्या दृष्टि होते हुए भी उनमें अल्पतर ही होगा, और सम्यक दृष्टियों के तो अल्पतर होता ही होता है। और शुक्ल लेशा वाले अन्य गति के यानी मनुष्य तिर्यंचों में भी जहाँ शुक्ल लेशा है वहाँ भी अल्पतर ही होगा, अन्यथा मिथ्या दृष्टि में तीनों ही हो सकते हैं, परंतु शुक्ल लेशा वालों को अल्पतर होगा। अभी हम नीचे से पांचवी लाइन में आए हैं, 98 पृष्ठ पर जो हम विशेषार्थ पढ़ रहे थे उसमें से पहले पैराग्राफ के नीचे से पांचवी लाइन, आनत कल्प से लेकर नव ग्रवेक तक के देवों के तथा शुक्ल देशा वालों के मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन दोनों संभव है, फिर भी यहाँ एक अल्पतर स्थिति ही होती है। यानी जहाँ दोनों है वहां तो तीनों होने चाहिए थे मिथ्यात्व की अपेक्षा, परंतु यहाँ तो अल्पतर ही होती है। अतः उक्त स्थानों में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव को अल्पतर स्थिति विभक्ति का ही स्वामी बतलाया है। शेष मार्गणाओं में शेष मार्गणा अभी जो गिनाई थी, संयतों की गिनाई थी, सम्यक दृष्टियों की गिनाई थी, या अकषायी है या अपगत वेदी है, अन्य अन्य, तो वहाँ अल्पतर स्थिति विभक्ति का स्वामी सम्यक दृष्टि ही होता है, क्योंकि उनमें मिथ्या दर्शन संभव ही नहीं है। ख्याल में, यहाँ तो भुजगार का स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि। अवस्थित का कौन है? मिथ्या दृष्टि। और अल्पतर का कौन है? सम्यक दृष्टि तो सभी लेने, और कौन से मिथ्या दृष्टि लेने? शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि, या देवों की अपेक्षा आनंद से लेकर ग्रेवेक तक के, ये स्वामित्व हुआ। इस प्रकार स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। अब कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। कालानुगम में क्या कहेंगे अभी? हाँ, जितने काल तक, कहने हर समय भुजगार होता जाए ऐसा होना चाहिए, या हर समय अल्प 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 होना चाहिए, उसको काल कहेंगे। एक समय में भुजगार हुआ, दो समय, दूसरे समय में अवस्थित रहा, तो उसको एक समय का भुजगार कहेंगे। ये बात अभी यहाँ बताने जा रहे हैं। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, यानी एक समय के लिए ज़्यादा हुआ, और उत्कृष्ट काल चार समय है। लगातार प्रत्येक समय में भुजगार होता जाए तो की बात है। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन पल्य और अंतर्मूर्त अधिक 163 सागर है। ये पहले भी बात आई थी 163 सागर की। ये सम्यक्त्व का काल है, जब तक समय दृष्टि है। हाँ, ये विशेषांश में बताएंगे। अवस्थित स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, यानी पहले जितना था दूसरे समय में उतना ही रहा, उसको हम अवस्थित कहेंगे। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये अवस्थित का अंतर्मूर्त कैसे होगा? बंद जो उत्कृष्ट बंद हम देखते थे, या जगन्य भी बंद करता है, अंतर्मूर्त उतना का उतना करता है, तो स्थिति भी उतनी की उतनी रहेगी। स्थिति की अपेक्षा अगर कम बंद होने लगा तो घटता जाएगा, स्थिति से अधिक अधिक बंद करता जाए तो बढ़ता चला जाएगा, उतना का उतना उसका, स्थिति से ज्यादा बंद हो और उतना का उतना रहे, या स्थिति जितना ही बंद होता रहे, ऐसा भी हो सकता है। जितनी स्थिति है उतना ही बंद, या स्थिति से अधिक भी उत्कृष्ट, जैसे हम 70 कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट बंद लगातार होता रहे तो कितने काल तक होगा? अंतर्मूर्त तक, क्योंकि पहले समय में बंद किया तो 70 कोड़ा कोड़ी हुए, अब उतना ही बंधक कितने काल तक करेगा? अंतर्मूर्त तक करेगा। तो वह अंतर्मूर्त उसका उत्कृष्ट काल कहेंगे। किसका? अवस्थित का उत्कृष्ट काल एक अंतर्मूर्त होगा। विशेषार्थ, अरे नहीं, अवस्थित का एक समय उत्कृष्ट। इसी प्रकार अचक्षु दर्शनी और भव्य जीवों के जानना चाहिए। ये जो ओघ का कथन है ऐसा ही कथन और कहाँ होगा कि जघन्य एक समय और उत्कृष्ट चार समय लिए, और अल्पतर का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट तीन पल्ले और अंतर्मूर्त अधिक 163 सागर, ये कौन कौन सी मार्गणा में होगा? अचक्षु दर्शनी, क्योंकि वो सारे अचक्षु दर्शनी रहते ही रहते हैं, चक्षु दर्शनी में तो लिमिट है। और भव्य जीवों के जानना चाहिए। अभी हम विशेषार्थ पढ़ेंगे। विशेषार्थ बड़ा लंबा चौड़ा है। किसी जीव ने एक समय तक भुजगार स्थिति का बंध किया। भुजगार स्थिति का अर्थ क्या है? स्थिति से अधिक बंध किया तो उसका भुजगार हुआ, स्थिति भुजगार हो गई, पहले कम थी अभी बढ़ गई। और दूसरे समय में वह अल्पतर या अवस्थित स्थिति का बंध करने लगा, पहले समय में जितना बंध किया था स्थिति से ज्यादा किया था, तो उसकी स्थिति बढ़ गई। और दूसरे समय में उतना ही बंद किया, तो अभी बढ़ेगा तो नहीं ना, उतनी की उतनी रहेगी, तो भुजगार का एक समय ही स्थापित होगा। या दूसरे समय में कम किया, एक समय के लिए ज्यादा किया, दूसरे समय में कम किया, तो भी भुजगार तो एक ही समय के लिए हुआ, ये भुजगार का एक समय है। जघन्य में जघन्य, तो भुजगार का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जब कोई एक इंद्रिय जीव पहले समय में अद्धाक्षय से स्थिति को बढ़ाकर बांधता है, दूसरे समय में संक्लेश क्षय से स्थिति को बढ़ाकर बांधता है, तीसरे समय में मरकर और एक विग्रह से संगियों में उत्पन्न होकर असंगियों के योग्य स्थिति को बढ़ाकर बांधता है। यानी प्रत्येक समय में एक एक कैसे अधिक अधिक बांध सकता है कोई जीव। और चौथे समय में शरीर को ग्रहण करके संगी के योग्य स्थिति को बढ़ाकर बांधता है, तब उस जीव के भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल चार समय प्राप्त होता है। ऐसे ही यानी चार समय किसके हो सकता है, तो यही इसी जीव के होंगे। क्या क्या हम फिर कहेंगे इसको, वो और इसका विशेष खुलासा और बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अद्धा का अर्थ होता है काल। इस प्रकार भुजगार स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय समझना चाहिए। एक काल क्षय ने किसका क्षय, आपने बताया ना, अद्धा क्षय ने काल क्षय, उसका अर्थ क्या है? यहाँ क्या अर्थ लेना, देखो स्थिति बंद होता है, विशिष्ट स्थिति का बंद लगातार होता रहे तो उसके लिए लिमिट है, अंतर्मूर्त तक होगा, बाद में कम या ज्यादा होगा। तो उसने पूर्व में जो स्थिति बांध रही थी उसका काल का क्षय हुआ, तो अन्य स्थिति बांधने लगा, तो बढ़कर बांधी। फिर कहते संक्लेश स्थिति क्षय से स्थिति को बढ़ाकर बांधता है। अभी हाँ, संक्लेश कम होगा तो स्थिति बढ़ेगी। कौन से कर्मों के? हाँ, मोहनी की बात करें। परंतु उस विशिष्ट स्थान का क्षय हुआ। देखो हम खुलासा पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी। देखो इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है, यहाँ एक स्थिति के बंद के योग्य काल को अद्धा कहा है। क्या कहते हैं? एक विशिष्ट स्थिति यानी कितने समयों की स्थिति बंदी, विशिष्ट स्थिति के बंद के काल को, कोई भी मान लेते कि 100 समय की स्थिति बंद रही है, तो 100 समय की स्थिति का बंद का काल तो लिमिटेड है, लगातार उतना ही स्थिति बंद नहीं हो सकता है, तो उस योग्य काल को अद्धा कहा। अद्धा यानी काल, जो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक होता है। तात्पर्य यह कि किसी जीव के विवक्षित एक स्थिति का बंद हो रहा है तो वह बंद कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक होगा, इसके पश्चात वह बदल जाएगा, तब उसके न्यून या अधिक स्थिति का बंद होने लगेगा। पर यहां भुजगार की स्थिति विवक्षित है, हमें तो भुजगार की बात हम कर रहे हैं, लगातार चार समय कैसे हो सकता है, अतः अधिक का बंद कराना चाहिए। पहले विशिष्ट बंद होता था, अभी वो बंद का काल समाप्त हुआ, उसकी लिमिट खत्म हुई, अभी अधिक का बंद करने लगा, तो ये भुजगार का एक समय हुआ। पर इस प्रकार से अध्याक्षे से बंधने वाली स्थिति में फर्क पड़ जाने पर भी। अब स्थिति का बंधक काहे से होता है? तो स्थिति बंध के कारणभूत संकलेश रूप परिणामों में नियम से बदल होगा ही यह नहीं कहा जा सकता। क्या कहा? बंधने वाली स्थिति तो बदल गई, परंतु स्थिति बंध के कारणभूत परिणामों को क्या कहते हैं? स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, इसको कषाय स्थान भी कहेंगे, और वो संकलेश स्थान और विशुद्धि स्थानों में उसके भी बहुत असंख्यात भेद होते हैं। तो कहते हैं वो संकलेश रूप परिणाम बदल जाएगी ही ऐसी बात नहीं है। किसी जीव के अध्याक्षय के साथ संकलेक्षय हो जाता है, यानी पूर्व में जितना स्थिति बंध होता था उसका उसकी मर्यादा हो गई, परंतु वो जो संकलेश का स्थान है वो नहीं पलटा था। ख्याल आते हैं ना, संकलेश के स्थान में पलटते चलते जाते हैं। तो अध्याक्ष के साथ संकलेक्षय हो जाता है तो एक साथ ही वो चेंज हो जाएगी कोई स्थिति में, और किसी जीव के अध्याक्षय के पश्चात भी संकलेश क्षय होता है। संकलेश क्षय होना यानी उस संकलेश स्थान से अन्य स्थान को प्राप्त होना, उसको संकलेश क्षय कहते हैं। केवल अध्याक्षय के होने पर स्थिति में अधिक से अधिक वृद्धि, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही हो सकती है, अधिक नहीं। मैक्सिमम कितनी वृद्धि हुई? पहले जितना बांधा था उससे पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण अधिक हो जाती, उससे अधिक नहीं। क्योंकि एक एक क्रोधादि कषाय रूप परिणाम खंड उक्त प्रमाण स्थिति बंध का ही कारण होता है। क्या कहते हैं? परिणाम खंड कहा? उतनी ही स्थिति बांधने, एक विशिष्ट स्थिति बांधने। हमने अभी 100 समय लिया ना, 100 समयों की स्थिति बांधने वाले कषायों के परिणाम कितने हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक विशिष्ट स्थिति बांधने के लिए अलग अलग परिणाम इतने हो सकते हैं, उन सबको मिलकर वो उसका परिणामों का खंड कहेंगे। 101 समय की स्थिति बांधने वाले, उसका अपना अपना जो रेंज है वो अलग होगा, उसके अपने असंख्यात लोक प्रमाण। भले दोनों में ओवरलैपिंग है, जैसे हम अनुकृष्टि में देखते थे परिणामों की समानता ऊपर नीचे है, वैसे 100 समयों की स्थिति बांधने वाले विशिष्ट कषायों के परिणाम है, और 101 नंबर के 101 समयों की स्थिति बांधने वाले, देखो यहाँ 100 समय की एक विशिष्ट स्थिति है, इतनी स्थिति कितने अलग अलग परिणाम बांध सकते हैं? तो इतने। 101 नंबर की स्थिति बांधने वाले कषाय के परिणाम कौन से हो गए? वो अपने ऐसे हो गए, ये भी असंख्यात लोग हो गए, परंतु ये बीच वाले जो है वो इतनी भी स्थिति बांध सकते हैं, इतनी भी स्थिति बांध सकते हैं। और इसके ऊपर का यहाँ का परिणाम, ये तो नियम से 101 वाला ही बांधेगा। ये परिणाम जो है वो 100 का भी बांध सकता है, 101 का भी बांध सकता है। तो ये परिणाम बदल गए ना, संकलेश है, तो इस परिणाम से वो अधिक भी बंद होगा। तो पहले तो कौन सा बंद क्यों अधिक हुआ? उसका काल समाप्त हुआ इसलिए, और आगे वाला उसका संकलेश का क्षय हो गया इसलिए। पहले संकलेश स्थान वही होते हुए भी काल बदल गया, यानी काल समाप्त हुआ, बदल गया यानी समाप्त हुआ, और दूसरे समय में वो परिणाम चेंज हो गए, अधिक स्थिति के योग्य परिणाम हो गए। अभी यहां हमने एक समय में घटाया, वहां अलग घटाओ, बीच में ऐसे परिणाम हो गए कि जाए 150 वाले हो गए। पहले वाले 100 से 100-100 बांधने का काल पूरा हुआ था, इसलिए अभी बीच वाला कोई भी 110 वाला बांधने लगे, काल पूरा हुआ इसलिए। अब ये परिणाम चेंज हुए तो 150 वाला बांधेंगे। तो पहले समय में भुजगार था, दूसरे समय में भी भुजगार हुआ, इसको क्योंकि से फिर पढ़ते। क्योंकि एक एक क्रोधादि कषाय रूप परिणाम खंड उक्त प्रमाण स्थिति बंध का ही कारण होता है। ये जो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं, स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम वो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। उतनी ही इतनी स्थिति बांधने के ये सारे ही, तो उसको परिणाम खंड कहा। पर उक्त प्रमाण स्थिति बंध का ही कारण होता है, पर संक्लेश क्षय होने पर अधिक से अधिक संख्यात सागर स्थिति बढ़ सकती है और घट भी सकती है। वो चेंज हुआ संक्लेश ने, उस परिणाम उन परिणामों में बदल हो गया, तो वहां तो हमें कम भी हो सकती है अधिक भी हो सकती है। हम तो भुजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए अधिक स्थिति बांधने वाले परिणाम की बात करेंगे यहां। हाँ, यहाँ क्या कहा फिर ऊपर, केवल अध्याक्षय का क्षय होने पर, यानी काल उतना लगातार बांधने का काल मिट गया, तो उसमें कितनी स्थिति की वेरिएशन हो सकती है पल्ले के असंख्यात विभाग। संक्लेश स्थान वही रहते हुए काल समाप्त होने के कारण कितना डिफरेंस होगा उसमें पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। परंतु संक्लेश क्षय होने के कारण कितना वेरिएशन हो सकता है, बढ़ सकते हैं संख्यात सागर। घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, ये तो जनरल कथन कर रहे हैं। एक इंद्रियों में तो संख्यात सागर नहीं कहेंगे, ख्याल में है ना। हाँ, किंतु यहां भुजगार की विवक्षा है, इसलिए वृद्धि ही लेना चाहिए। पहले उन्होंने रूल बता दिया कि स्थिति में घटना या बढ़ना कब होता है, अध्याक्षय होने पर या संक्लेश क्षय होने पर। संक्लेश क्षय ने वो परिणाम, विशिष्ट परिणाम बदल गया, क्षय यानी घटना है नहीं। हाँ, यानी वो उस परिणाम का चेंज होकर एक विशुद्धि बढ़ गई कहो, या संक्लेश कम हुआ या संक्लेश बढ़ गया, दोनों ओर हम ले सकते हैं। चेंज होगा, वो परिणाम बदल गए, अन्य स्थिति के कारणभूत परिणाम हो गए, क्योंकि ये परिणाम जो है, इतने परिणाम जीव के परिणाम बदलते रहते हैं। नहीं, क्षय का अर्थ घटना ऐसा नहीं है, उसका पीरियड लगातार कितने काल तक होगा, हम जो देखते हैं ना उसका अंतर्मुर्दिया, जो कोई लगातार रहने का काल है वो समाप्त हो गया। तो यहां हम भुजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए अधिक स्थिति बांधने वाला परिणाम हो गया ऐसा हम लेंगे। फिर से रिपीट करना, देखो यहां दो बातें बताई है, पहले में अध्याक्षय और दूसरा में संक्लेशय। स्थिति अधिक क्यों बनती है, यानी यहां स्थिति में वृद्धि कब होगी, जब बंद बड़ा होगा तब, क्योंकि विशिष्ट स्थिति है, पहले से ही निषेक है पड़े हुए, ये सत्ता में निषेक पड़े हैं, इनसे कम स्थिति बंधेगी तो टोटल में कुछ वृद्धि होगी नहीं, उल्टा एक निषेक कम होगा। तो क्या होना चाहिए, जितनी स्थिति है उससे ज्यादा बंध होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहले कम बंध हो रहा था, यानी हम स्थिति इतनी लेते हैं, पहले इतना बंद हो रहा था, अब उतना 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 बंद होने का जो लगातार है उस विशिष्ट काल तक होगा, बाद में वो बढ़ेगा या कम होगा, इसमें से कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है, हम बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो अभी जो इस समय बंद हो रहा है वो स्थिति से ज्यादा बंद हो रहा है, यानी जो बंद हो रहा है तो इसकी स्थिति भी बढ़ गई ना, सत्ता की स्थिति बढ़ गई, क्योंकि अभी बंद ज्यादा हो रहे हैं। तो ये तो अध्याक्षय हुआ था, बंधने की जो लगातार बंधने की मर्यादा समाप्त हुई थी, इसलिए ज्यादा करके बंधा, अभी कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है, अभी अधिक बांधा उसने, ये तो हो गया। दूसरे समय में क्या हुआ, उसके संक्लेश परिणाम जो है स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम, वो भी चेंज हो गए। चेंज होने को यहां संक्लेश क्षय कहा है। तो ऐसे परिणाम हो गए कि तब उस परिणाम के कारण उसने स्थिति और ज्यादा बांधी, तो पहले समय में अधिक बंद होने के कारण स्थिति बढ़ गई थी, दूसरे समय में वो संकलेश बढ़ गई इसलिए फिर स्थिति बढ़ गई ऐसा कहेंगे ना, स्थिति ज्यादा बन रही तो संकलेश ज्यादा हुए ऐसा भी कहेंगे हम। पूर्व के संकलेश नहीं रहे, अन्य संकलेश हुए। उससे अन्य हो, हाँ, क्योंकि उनका काल भी मर्यादा थी, हम कहते ना, हाँ, संकलेश क्षय का अर्थ है तो उन परिणामों में बदल हो गया। संकलेश घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, वैसे के वैसे नहीं रहे, वो संकलेश क्षय कहेंगे उसको। ये दूसरे समय की बात घटित की, नहीं उसमें कितने बढ़ सकता है किसी जीव को वो बात चल रही, कितना बढ़ा वो नहीं कहा, एक समय भी बढ़ सकता है और कितना बढ़ेगा अधिक से अधिक पल्ले के असंख्या तो बात, परंतु संकलेश क्षय के कारण वहां भी थोड़ा भी बढ़ सकता है, अधिक से अधिक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कुछ सागर तक, संख्यात सागरों तक बढ़ सकता है, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, या मैक्सिमम वेरिएशन कितना होगा पल्ले के असंख्या तो विभाग का, हाँ, संकलेश क्षय के कारण मैक्सिमम वृद्धि या हानि संख्यात सागरों की हो सकती है, इतनी बात हमने अभी पढ़ी। तो यहां भुजगार की बात है इसलिए हम वृद्धि की ही बात करेंगे, हानि की बात यहां नहीं लेंगे। अभी देखो हमने जो मूल में देखा था, पहले समय में क्या लिया था उसने, अध्याक्षय से स्थिति को बढ़ाकर बांधा, विशेषार्थ में ही हम देख रहे थे, विशेषार्थ की तीसरी चौथी लाइन में 98 पेज पर। दूसरे समय में क्या हुआ था, संकलेश क्षय के कारण स्थिति को बढ़ाकर बांधा था। अब तीसरे समय में क्या है, मरकर एक विग्रह से संगियों में उत्पन्न हुआ है परंतु असंगी के योग्य स्थिति को बांध रहा है, वो भी बढ़कर बांध रहा है परंतु संगी के योग्य नहीं, असंगी के योग्य बांध रहा है, जन्मा है संगियों में, बांध रहा है असंगी के योग्य, परंतु असंगी के योग्य, असंगी की मैक्सिमम लिमिट हो सकती ना, परंतु वो बढ़कर बांध रहा है। असंगी के योग्य ने क्या, अभी जो कोई हजार सागर की मैक्सिमम, हाँ, तो उसमें असंगी के, परंतु संगी के योग्य तक नहीं पहुंचा है, ऐसा लेना। कोई भी हो, असंगी में से असंगी में भी आया, वही तो बात है, परंतु एकेंद्री हो या असंगी कोई भी हो, तो उनके योग्य जगन्य पहले बांध रहा था, अभी उनके ही योग्य ज्यादा, परंतु है तो असंगी के योग्य, असंगी की लिमिट पार नहीं की उसने, इतनी बात बताना चाहते हैं। इसी प्रकार, इस प्रकार जब किसी एकेंद्रीय जीव के, एकेंद्रीय की बात की ना यहाँ पर, वहां मिली ना, जब कोई एकेंद्रीय जीव चार समय कैसे घटित करना है, तो इस प्रकार अभी हम 99 पेज पर पढ़ेंगे, इस प्रकार मिला जहां हमने छोड़ा था, जब किसी एकेंद्रीय जीव के पहले समय में अध्याक्षय से स्थिति में वृद्धि होती है, दूसरे समय में संकलेश क्षय से स्थिति में वृद्धि होती है, तब उसके भुजगार के दो समय तो एकेंद्रीय पर्याय में प्राप्त हो जाते हैं, तथा वह जीव यदि तीसरे समय में मरा, यानी वो दो समय तक भुजगार करके तीसरे समय में मरना चाहिए, और एक मोड़े के सात संगियों में उत्पन्न हुआ, वहां भी एक मोड़े में ही उत्पन्न होना चाहिए, दो मोड़े में तो फिर उसको दो मोड़ तक वो अल्पतर रहेगा, वो नहीं चलेगा। तो उसके तीसरे समय में असंगी के योग्य स्थिति का बंद होने लगेगा, और चौथे समय में शरीर को ग्रहण कर लेने के कारण शरीर बराबर करना, संगी के योग्य स्थिति का बंद होने लगेगा, शरीर का ग्रहण करना है ना, वहां तो पर्याप्ति का वो उसका पहला समय वहां पहुंच गया है, आहार ग्रहण शुरू हो गया उसका, तो संगी के योग्य स्थिति का बंद होने लगेगा। इस प्रकार उसी जीव के भुजगार के दो समय संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में प्राप्त हुए, देखो पहले दो समय तो एक इंद्रिय में बिताए, यानी एक दूसरा समय जो भुजगार का था वो एक इंद्रिय का अंतिम समय था, तीसरे समय में वो विग्रह गति में आया है, विग्रह का पहला मोड़, और चौथे समय में शरीर ग्रहण शुरू किया। पहले समय में अध्याक्षय हुआ, दूसरे समय में संकलेक्षय हुआ, तीसरे समय में विग्रह गति में था और चौथे समय में शरीर ग्रहण किया, तो तीसरा और चौथा समय उसका पंचेंद्रिय का गिनाएंगे, पहले दो समय एकेंद्रिय के गिनाएंगे। शरीर ग्रहण का पहला समय है ना, वो तो बता दिया ना अभी, पर्याप्ति का पहला समय कहो, हाँ उसको शरीर ग्रहण का पहला समय कहते हैं। शरीर के परमाणुओं का ग्रहण शुरू कर दिया, शरीर नाम कर्म का उदय चल हो गया, ऐसा कहो। हाँ विशिष्ट उसका योग चालू हो गया, शरीर के योग्य औदारिक औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चालू हो गया, उसकी बात मत निकालना है, ये उपवाद। उसको पहला का उपवाद नहीं कहते, विग्रह गति में ही उपवाद कहेंगे। हाँ बाद में परिणाम योग स्थान होते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं लेना है। अब यहाँ वो चार समय कैसे है, एक इंद्रिय में दो समय, पंचेंद्रियों में दो समय, परंतु संगी में भी उत्पन्न हुआ है तो पहला विग्रह गति का है, एक मोड़ सही थे ना, तो एक समय तक तो उसके असंगी के योग्य, मोड़ के बाद तो वो शरीर ग्रहण का समय कहलाएगा उसका, वो पहुंच जाता है और शरीर के परमाणु का ग्रहण भी शुरू हो जाता है, तब उसके संगी के योग्य बंद होगा। असंगी में जितना हो सकता है उतना। इस तरह भुजगार के कुछ कुल समय चार हुए। अतः भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल चार समय कहा, जो जीव जीव स्पष्ट करना, जो जीव एक समय तक अल्पतर स्थिति का बंध करके दूसरे समय में भुजगार या अवस्थित स्थिति का बंध करने लगता है, उसके अल्पतर का जघन्य काल एक समय का पाया जाता है। ये तो आसान है, जैसे भुजगार का एक समय घटित किया था, ऐसे अल्पतर का भी एक समय घटित हो सकता है। चार समय के बाद वो अवस्थित हो सकता है, वो भुजगार नहीं होगा उसका, हाँ कर नहीं सकता, मैक्सिमम चार ही समय हो गए। वो तो योग के स्थान देखे थे हमने, योग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेंगे, प्रदेश बढ़ेगी कि स्थिति बढ़ेगी, इसीलिए मैंने आपको भी कहा था वीरेंद्र भाई को, वो विषय यहां मत निकालना। योग से तो प्रदेशों का बंध अधिक होगा, योग बढ़ेगा तो प्रदेश भी बंधेंगे, स्थिति का बंध अधिक होने लगता है तो उसमें तो ये जो कषाय के यानी संकलेश जिसको कहा यहाँ, कषाय अध्यवसाय स्थान जिसको कहते हैं, स्थिति बंध के योग्य परिणाम, उसको स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान भी कहते हैं। स्थिति यानी कितनी स्थिति बांधी, कितने समयों की बांधी, उसको स्थिति कहेंगे, स्थिति का बंध कहेंगे, और वो स्थिति किन परिणामों से बंधी उसको स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहेंगे, उसी का दूसरा नाम है कषाय अध्यवसाय स्थान। अब एक एक कषाय अध्यवसाय के स्थान के साथ अनुभाग अलग अलग वेरिएशन बनते हैं, उसके साथ वो होते हैं, तो वो अपने अपने असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ये हमने भाव परावर्तन में देखा था। यहाँ तो उसकी बात नहीं लेनी है, यानी परिणामों की कितनी सूक्ष्मता है। एक समय का परिणाम है तो उसमें वो केशा देवसाय स्थानों के वेरिएशंस कितने हो सकते हैं, अनुभाग अनुभाग उसमें कितने हो सकते हैं, ये एक परिणामों की कितनी सूक्ष्मता है उसको बताते हैं। क्योंकि स्थिति तो उतनी की उतनी बनती दो चार जीवों को, परंतु स्थिति उतनी बनते हुए भी उसके परिणामों में कितने वेरिएशंस है, असंख्यात गुणा असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक, इतने अलग अलग वेरिएशंस एक विशिष्ट स्थिति बांधने वाले की होती है, और उसके साथ एक एक अनुभाग के साथ जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण अलग अलग योग स्थान हो सकते हैं। तो योग के इतना बढ़ेंगे तो भी उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होने वाला, ख्याल है ना, यही तो हमने सीखा था उसमें। इतनी वेरिएशंस योग के होते हुए उतना ही बंद होते हुए उसके कितने, देखो असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान, एक एक कषाय के साथ अनुभाग के अध्यवसाय स्थान, उसके असंख्यात लोक अपने अपने अलग अलग, और उसके एक एक अनुभाग के साथ योग स्थान अलग अलग, श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। तो ऐसे स्थिति बंध के स्थिति के कितने वेरिएशंस है। पंचेंद्रियों में भी देखते तो अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक एक एक समय के अलग अलग परिणाम कितने हो गए, उनमें भी ये सारे लगा लेना, हर एक में वो सब लगाते बैठो, और जब क्रम से हो गए पूरे तब हम कहेंगे एक भाव परावर्तन हुआ। वहां तो पंचेंद्रियों में घटित किया, एक इंद्रियों में ले ही नहीं गए हाँ। क्योंकि एक एक समय से बढ़ते हुए लेने हैं ना, क्या कहा, एक एक समय से बढ़ते हुए परिणाम लेना, स्थिति बंध के एक एक समय से बढ़ते हुए। तो एक एक समय से बढ़ते हुए कहाँ पॉसिबल है, अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर सत्तर कोड़ा कोड़ी तक, अंत कोड़ा कोड़ी के नीचे असंगी से लेकर उनके मिनिमम तक गैप है, असंगी के योग्य तो हजार सागर होगी, और हजार सागर से लेकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक वहां गैप होगी बीच में, इसलिए एक एक समय को बढ़ते हुए कंटिन्यूस नहीं ले सकते उसमें। गैप मैंने असंगी के योग्य उत्कृष्ट बंध कितना होता है, एक हजार सागर, और संगी के योग्य जगन्य बंध कितना होता है, मिथ्या दृष्टि को लेना यहाँ पर हाँ, अंत कोड़ा कोड़े, क्योंकि संगियों में उससे भी जगन्य कौन करेगा, जो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, श्रेणी चढ़ेगा वो, क्षपक की बात नहीं पर श्रेणी चढ़ेगा वो, उपशम वाला भी कम बंध करेगा, परंतु उसकी बात यहाँ नहीं है। एक एक समय से कंटिन्यूस बढ़ते हुए परिणाम, बढ़ते हुए स्थिति के बंध कौन करेगा, अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर सत्तर कोड़ा कोड़ी तक, उसको गैप इसलिए कहा कि उसके एक एक समय से बढ़ते हुए वहां कोई स्थिति के बंध है ही नहीं है, वो घटते घटते ले सकते हैं, हम पंचेंद्रियों में से गया नीचे और फिर उसके घर गए उसको ले सकते हैं, बांधने की अपेक्षा लिया हमने। नहीं, भाव परावर्तन में संगी पंचेंद्रियों को लिया है, संगी पंचेंद्रियों के योग्य ही परिणाम लिए वहां पर, बीच में वो एक इंद्रियों में जाने ही वाला है। क्योंकि पंचेंद्रिय की लिमिट कितनी है, पंचेंद्रिय की 2000 साधिक 2000 सागर, उसके बाद कहां जाएगा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन वहां भी जाके आएगा, तो भी उसका पंचेंद्रिय के योग्य आगे वाला बंद होना चाहिए कंटिन्यूएशन में, हमें तो टाइम गिनना है ना, इसलिए उसका काल ये कितना बड़ा, सबसे बड़ा परावर्तन का काल भाव परावर्तन घटित होता है। बीच बीच में कितने बार एक इंद्रिय में जाएगा वो, क्योंकि पंचेंद्रियों की तो लिमिट है, और उत्कृष्ट यहां करके जाएगा तो एक इंद्रिय में भी उत्कृष्ट रहेगा। देखो यहाँ भी हम देख रहे हैं, एक जीव एक समय तक अल्पतर स्थिति का बंध करके, मैं दोबारा ये वाक्य पढ़ रही हूँ, दूसरे समय में भुजगार या अवस्थित स्थिति का बंध करने लगता है, उसके अल्पतर का जघन्य काल एक समय का पाया जाता है, तथा ये एक समय तो घटित करना आसान है, तथा जिस जीव ने अंतर मुहूर्त मुंह के ऊपर रफाड़ देना, अंतर मुहूर्त काल तक अल्पतर स्थिति का बंध किया, क्या किया उसने, अंतर मुहूर्त तक अल्पतर ने घटता हुआ बंध करते गया, अनंतर वह तीन पल्ले की आयु लेकर भोग भूमि में उत्पन्न हुआ। यानी कम स्थिति का बंद कर रहा है तो एक एक तो निषेक गलता ही जाएगा, स्थिति कम बांध रहा है तो उसकी सत्ता की स्थिति घटती चली जाएगी, अंतर्मूर्त काल तक अल्पतर हुआ। फिर क्या हुआ, तीन पल्ले की आयु लेकर भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, और वहां आयु में अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर उसने सम्यक्त्व को ग्रहण किया। अनंतर वह 66 सागर तक सम्यक्त्व के साथ परिभ्रमण करता रहा। पहला अंतर्मूर्त लिया, फिर तीन पल्ल लिया, वो समाप्त होने के पहले पहले सम्यक दृष्टि हुआ तो अल्पतर ही चलता रहेगा उसका। तत्पश्चात 66 सागर के बाद अंतर्मूर्त काल तक सम्यक मिथ्यात्व में रहा, वहां से पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त करके दूसरी बार 66 सागर तक सम्यक्त्व के साथ परिभ्रमण करता रहा। तत्पश्चात मिथ्यात्व में गया और 31 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हो गया। और वहां से च्युत होकर और मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त काल तक उसने अल्पतर स्थिति बंध किया। पश्चात वह भुजगार स्थिति बंध करने लगा। तो ये 66 132 हुए और फिर उसमें 31 सागर वाला लिया तो 163 हो गए उसके, उसमें भी साधिक कर दिया, पहला एक अंतर्मूर्त फिर वो तीन पल्ल्य। इस प्रकार अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल, ये अल्पतर होने का उत्कृष्ट काल, यानी लगातार स्थिति अल्प 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 होगी उसका उत्कृष्ट काल, अंतर्मूर्त और तीन पल्ले अधिक 163 सागर प्राप्त होता है। हाँ, भोग भूमि में अल्पतर होगा, पहले आई थी ना भोग भूमि वाले 70 सागर कोड़ा कोड़ी का नहीं बंद करते। हाँ, ये मुझे लगता है हमने पढ़ा था अध्याय छेद में आया था, कहाँ हुआ था निकालो। हाँ निकालो, वहाँ शुक्लालेशा कहाँ है, उनकी भी अंतर्मूर्त में बदलेगी ना शुक्लालेशा, भोग भूमि में तीन शुभलेशा है वहाँ पर। ने भोग भूमि की बात हमने पढ़ी थी मगर वो कौन से प्रकरण में आई थी वो देखना है। अध्याचेद 10-11 में है वो उत्कृष्ट अध्याचेद हो गया, भोग भूमि की बात है। वो तो देखा हमने, हाँ वो मैक्सिमम नहीं होता है, हमने भी देखा था वहां पर, उत्कृष्ट स्थिति वन उनको नहीं होता ऐसा देखा था। पता नहीं कहाँ तो हमने पढ़ी थी। पीछे लिखा है क्या आपने कहीं बोगभूमि की बात? वही बोगभूमि वालों में जाने दो, चलो अभी यहां तो बता दिया है उन्होंने। देखो हमने आपको याद होगा तो पूर्व कोटिया जब ली थी तो तीन पुल्ले वाली पूर्व कोटि नहीं ली थी। देखो हमने उसमें पूरे 95 पूर्व कोटिया और हम हमेशा जो उत्कृष्ट काल देखते थे ना उसमें से हमने अंतिम तीन पल्ले वाले को हमने निकाला था उसमें से। हाँ, हमने वहां लिया भी था इतने पूर्व कोटि लेना उसमें से। अधिक तीन पल्ले लिखा था है बगा, किंतु भोगभूमि में उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्राप्त होती। 50 पृष्ठ पर ही विशेषार्थ में है, भोगभूमि में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं होती अतः प्रत्येक काल में से तीन पल्ले कम कर देना चाहिए, ऐसा हमने वहां लिखा था देखा था। क्योंकि ये उत्कृष्ट अंतर काल में घटित किया था, ये मूल में जो बात आई थी 49 पर उसका विशेषार्थ 50 पृष्ठ पर लिखा था। देखो विषय आप निकालना 50 पेज उसके 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी लाइन बीच में सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति। सामान्य तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले, वो 97 को हमने करेक्शन किया था। 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के कितना है? तो 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, और योनिमतियों की 15 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ल्य, परंतु भोगभूमि में उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्राप्त होती इसलिए वो तीन पल्ल्य को घटाया था। ये बात यहाँ आई थी, यही बात अभी यहाँ भोगभूमि की आयु लेकर उत्पन्न हुआ, यही बात यहाँ दी। यहाँ लिखा ना वो तो और है, वो उसकी बात नहीं करना है, वो मनुष्यों में भी होता है और कहाँ कहाँ होता है वो बात है। अब यहाँ जो हम 99 पृष्ठ पर आए हैं कि तीन पल्ले की आयु लेकर उत्पन्न हुआ, भोगभूमि में गया, उत्तम भोगभूमि में भी एक लेशा कायम नहीं रहेगी, भोग भूमि में वो उत्कृष्ट नहीं होता है, ये इतनी बात है, अनुत्कृष्ट होता है। यहाँ लिखा ना तीन पल्य कम करना, उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं होती। हाँ, उसमें अल्पतर होता है। ख्याल में आए? अभी हम पृष्ठ संख्या 99 पर आते हैं। ये 163 सागर में एक अंतर्मूर्त और तीन पल्ले बढ़ा दिए। हाँ, किस तरह से किया उन्होंने? किसी जीव ने अंतर्मूर्त काल तक अल्पतर स्थिति का बंध किया तो स्थिति का बंध कम किया, उसका अर्थ स्थिति एक एक समय से तो घटती गई, कितना भी बंध होने हो हर समय उसकी घटती गई, क्योंकि एक एक निषेक तो चला जाएगा। फिर उसके बाद भोग भूमि में आया, वहां भी घटता गया, अल्पतर हुआ। आयु के अंत में सम्यक तो प्राप्त किया, समय दृष्टि होने पर तो अल्पतर ही होता चला जाता है। तो 66 सागर के बाद सम्यक मिथ्यात्व में आया, वहां भी अल्पतर होता है। हाँ, सम्यक तो में 66 सागर, फिर सम्यक मिथ्यात्व में दोबारा 66 सागर तक रहा, और उसके पश्चात हाँ मिथ्यात्व में गया, और मिथ्यात्व में जाने के बाद फिर 31 सागर वाले देव में उत्पन्न हुआ। तो 31 सागर वाले भरे वो मिथ्या दृष्टि रहा, समय दृष्टि कुछ भी, वहां तो अल्पतर ही होता रहता है। तो 163 सागर प्राप्त होता है। हाँ, और वो तो द्रव्यलिंगी बने बाद में। एक स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल एक अंतर्मूर्त। हमें पहले एक विशिष्ट स्थिति बांधने का जघन्य काल एक समय, और वही की वही स्थिति बनती रहे तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब यदि कोई जीव स्थिति सत्व के समान स्थिति का बंध करता है, क्या कहता है, कंडीशन क्या है, जितनी सत्ता में स्थिति है उतना ही यदि वो बंद करता रहे, तो उसने 100 का बंद किया और उसमें एक निषेक गलने वाला, तो पूर्व का निषेक गल गया, पर इसकी तो 100 के 100 रहेगी ना। देखो उसकी सत्ता में कितने हैं, 100 है, अभी उसने 100 की बांधी, मान लेते पहले 5 में उसके निषेक नहीं है और 100 समय तक उसके निषेक पड़े हैं, यहाँ का गल भी गया, आगे के पोजीशन में क्या है, इसके भले 99 हुए थे पूर्व के, पर इसके 100वें समय पर स्थित है ना, ये तो पूरे 100 समय तक है पड़ा हुआ, और पूर्व में से एक एक निषेक गल जाए तो भी 100 के 100 पड़े हैं इसके, दूसरे समय में और भी 100 बांधा, और भी 100 बांधा, और भी 100, तो उसकी सत्ता कितनी रहेगी, 100 100 कैसा हुआ, 100 बांधी। हाँ, ये तो ये भी जब बांधे तो सत्ता के ही कहलाएंगे, वैसे यानी 100 के 100 ही रह जाएंगे। दूसरे समय में नीचे से कितने भी चले जाओ, 100 100 100 100 लगातार अंतर्मूर्त तो बांधता है, तो अवस्थित लगातार कितने तक रहेगा, अंतर्मूर्त तक, तो प्रोवाइडेड सत्ता की जितनी स्थिति है उतने का ही वो बंद करता रहे, ज्यादा करेगा तो भुजकार हो जाएगा, कम करेगा तो निषेक ऑलरेडी गलेगा तो अल्पतर हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, कम से कम एक समय तक, अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक ही ऐसा कर सकेगा। इसके ऊपर की लाइन फिर पढ़ते देखो, अब यदि कोई जीव मिला, नीचे से 7वीं लाइन, अब यदि कोई जीव स्थिति सत्व के समान स्थिति का बंध करता है तो, कम करेगा तो स्थिति तो गलती चली जाएगी, अधिक करेगा तो भुजगार कहलाएगा, तो वह कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक ही ऐसा कर सकेगा। इसके पश्चात उसके नियम से अल्पतरिया भुजगार स्थिति का बंद होने लगेगा। अतः अवस्थित स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। अचक्षु दर्शन और भव्य ये दो मार्गणाएं छद्मस्थ जीव के सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों दशाओं में सर्वदा रहती है। अतः इनमें ओघ प्ररूपणा बन जाती है और इसीलिए इनके कथन को ओघ के समान कहा। कालानुगम की बात चल रही थी ना यहाँ पर, इसलिए उसमें अचक्षु दर्शनी और भव्य जीवों को भी ग्रहण किया। अब आदेश की अपेक्षा नारकियों में चक्षु दर्शनियों में ये भव नहीं घटित होता है, क्योंकि वो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय ऐसा घटित किया था ना, ये ऐसे ही और कहां कहां घटित होता है वो बात यहां बताई। हाँ, सेकेंडरी जीव की बात की उन्होंने, क्योंकि वो जो स्थिति घटाई और फिर बाद में बढ़ाई वो एकेंद्रियों में घटित होता है। हमने उसके वो सारे देखे थे ना, आपको याद है संकलेश स्थान विशुद्धि स्थान जब हमने धवला में देखे थे, बहुत उसमें डिटेल्स थे, वहाँ एकेंद्रियों की अपेक्षा ही घटित किए थे वो सारे। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। जैसे उसने एकेंद्रिय में करके फिर वो पंचेंद्रिय संगी में गया था एकेंद्रिय जो, यहाँ तो नारकियों में ही घटित करना है, वो नारकी ही रहना चाहिए। तो भुजगार यानी कब होगा? हाँ, असंगी से आया हुआ एक समय तो ज्यादा संगी के योग्य ज्यादा किया उसने, ऐसा भी हो सकता है ना। और फिर हाँ, यानी पहले असंगी के योग्य था, संगी के योग्य था, फिर उसने उत्कृष्ट किया, अपने योग्य अधिक किया, उत्कृष्ट नहीं कहेंगे हम। दो समय अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। कुछ कम 33 सागर कैसे हो गए? सम्यक तो में रहा तथा अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, यानी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। पहली पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक प्रत्येक में भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल सामान्य नारकियों के समान है, यानी भुजगार का एक समय और दो समय तथा अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विशेषार्थ नरक में अध्याक्षय और संकलेक्षय से दो भुजगार समय प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल दो समय कहा। कोई एक असंगी दो विग्रह से नरक में उत्पन्न हुआ और उसके यदि दूसरे विग्रह में अध्याक्षय से और तीसरे समय में शरीर को ग्रहण करने से तथा चौथे समय में संकलेक्षय से भुजगार स्थिति बंद हुआ, तो इस प्रकार नरक में भुजगार स्थिति के तीन समय भी प्राप्त हो सकते हैं, पर यहाँ पहले कथन की ही मुख्यता है। अच्छा, अतः उच्चारणावृत्ति में उसी का उल्लेख किया है। जैसे हमने एकेंद्रियों में घटित किया है, हाँ, तो आपका कहना वो चक्षु दर्शनी में क्यों नहीं घटित किया है ना? ये चक्षु दर्शनी की मार्गणा आएगी इसमें, उसमें कितने होते हैं वो देखेंगे हम। इसमें भी आया नहीं चाहिए, आगे चक्षु दर्शनियों की मार्गणा होगी इसमें। ज्ञान कषाय दर्शन मार्गणा लिखानी चाहिए। आएगी बात, कल हम देखेंगे इसको। सब जगह वो दो दो समय उस पर्याय में लिए हैं। एक सौ सात में लिखा है क्या उसमें? हाँ, अभी तरस पर्याप्त हमको। यानी वो ये पर्याप्तों के समान होता है, और ये जो आपने घटित किया ना वो तो अपर्याप्तों में घटित होता है। तो यहाँ तो भुजगार सिद्धि के चार समय अपर्याप्त अवस्था में प्राप्त होते हैं लिख दिया है। कल हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे, अभी हमारा पैराग्राफ हुआ कि नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। विशेषार्थ पढ़ रहे थे हम, उच्चारणाचारण्य उत्ति में उसी का उल्लेख है। जिस जीव ने नरक में उत्पन्न होने के पश्चात अंतर्मूर्त काल में सम्यक्त्व का ग्रहण कर लिया है, और जो अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर मिथ्यात्व में गया, उसके नरक में अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर पाया जाता है। शेष कथन ओग के समान घटित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार प्रथमादि नरकों में भी कथन करना चाहिए, किंतु वहां अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण जानना चाहिए। जिस नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें कुछ कम करना। यद्यपि पहले नरक में सम्यक दृष्टि जीव भी उत्पन्न होता है और उसके अल्पतर स्थिति ही पाई जाती है, किंतु ऐसा जीव पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति के साथ नहीं उत्पन्न होता। क्या कहना चाहते हैं? कितनी होती आयु उसकी? 84,000 वर्ष तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी होगी? एक सागर में से पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम कर देना। अतः पहले नरक में भी अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर प्रमाण प्राप्त होता है। यानी पहले नरक वाले जो समय दृष्टि है उनके तो अल्पतर ही होगा, परंतु वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम एक सागर होगा। परंतु वहां जाने के बाद जिन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया है उनको एक सागर में कुछ कम इतनी वहां उसका उत्कृष्ट काल अल्पतर का प्राप्त होता है। हाँ, भुजगार का भी पॉसिबल है, और वो आगे अपर्याप्त में चार समय की भी बात कर रहे हैं, उसको देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनवो सदा देत होडो। अश्विन भाई, हाँ दोबारा लेंगे। अश्विन भाई,